हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेदांत की गाड़ी एक ही जल्दबाजी में दरवाजा खोलते हुए गाड़ी से बाहर आई और फिर लगभग दौड़ते हुए अंदर आई। अंदर पहुँचते ही उसे हॉल में बैठे अपने मम्मी पापा दिख गए। उन्हें देखकर एक पल के लिए उसे बहुत खुशी हुई और उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी नज़र उनके पास बैठे रूहान पर पड़ी, जिसका चेहरा बुरी तरह लाल था। रूहान को देखते ही अनाही के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ गई और वो धीमे कदमों से चलकर उनके पास आई। उसने सबसे पहले काशी और राधेश्याम दोनों के पैर छुए। काशी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और राधेश्याम सोफे से खड़े होते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। अनाही को जैसे धक्का लगा हो, उसने हैरानी से कहा, पापा आप क्या बोल रहे हैं? राधेश्याम ने गुस्से में कहा, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और अगर तुम मेरी बेटी हो तो ज़रूर समझ जाओगी कि तुम्हारा बाप तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है। या फिर इतने दिन इस बड़े से घर में रहकर तुम भूल चुकी हो अपने मम्मी पापा को और उनके उसूलों को। अनाही ने जल्दी से नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरा वजूद हो, आप हो तो मैं हूँ। आपके आगे मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और न कभी होगा। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बस कारण जानना चाहती हूँ, ताकि आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगी। रूहान ने अपनी भरी आँखों को उठाकर अनाही की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, मैडम जी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके मामा पापा परेशान हो गए, पर आप मुझे छोड़कर मत जाइए। उसमें बस यही बोलने की ताकत थी। ये बोलने के साथ ही उसकी पलकें वापस झुक चुकी थीं। वेदांत ने जल्दी से उनके पास आते हुए कहा, पापा जी बात क्या है, आप एक बार हमें बताएंगे? रूहान ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि आप अनाही को सीधा घर ले जाने के लिए आ गए हैं? राधेश्याम ने गुस्से में वेदांत को घूरते हुए कहा, दामाद जी हम आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे रास्ते से हट जाइए और ये बात आप अपने घर वालों से पूछें कि आखिर आपके भाई ने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। अभी तो मैं अनाही को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद फिर से मुलाकात होगी, लेकिन घर में नहीं सीधा कोर्ट में। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर उन्होंने अनाही की तरफ देखा, जो हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से कहा, पापा मैं आपके साथ जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं रूहान जी को डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। आप इसके सिवा आप मुझे कुछ भी मांग सकते हैं, मैं अपनी बेटी होने का फ़र्ज ज़रूर अदा करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक पत्नी का फ़र्ज भूल जाऊंगी, जिसमें सबसे पहले यही है कि मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहूंगी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। राधेश्याम ने चिढ़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने अनाही का हाथ पकड़ा और फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ जाने लगे। काशी भी सोफे से उठी और निवेदिता की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े और उनसे जाने की इजाज़त ली और फिर तेज़ कदमों से राधेश्याम और अनाही के पीछे पीछे आने लगी। अनाही मुड़कर रूहान की तरफ देख रही थी और राधेश्याम से विनती कर रही थी कि उसे न लेकर जाए, लेकिन राधेश्याम उसकी एक न सुन रहा था। अब तो मनही भी रोने लगी थी। ये देखकर रूहान को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोफे से उठा और तेज़ी से राधेश्याम के पीछे गया। वे लोग बाहर निकलते ही एक कैब वाले को कॉल कर रहे थे। ये देखकर रूहान ने जल्दी से कहा, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राधेश्याम ने उसे घूरते हुए कहा, दामाद जी मुझे आपकी कोई सफाई नहीं चाहिए, जो सफाई देनी है कोर्ट में जाकर देना, फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊँ यही सही है। रूहान ने उम्मीद से अनाही की तरफ देखा, जिसने रो रो कर अब अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने सुबकते हुए कहा, माफ़ करना रूहान जी, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट आपसे वादा करती हूँ मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी और आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर काशी ने गुस्से में कहा, तुम क्या बोल रही हो अनाही, तुम ही तो अपने पापा का गुरूर हो और ऐसे उनके खिलाफ जाकर तुम हमें बहुत ठेस पहुंचा रही हो। अनाही ने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा मानती हूँ आपके सारी उम्मीदें मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म होती हैं, लेकिन मेरी भी जिंदगी है, क्या तो आपको मेरी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी, और अगर करवा दी है तो मुझे पूरे दिल से उस रिश्ते को निभाने दीजिए, ऐसे ज़बरदस्ती करके आप मुझे मेरे पति से दूर नहीं रख सकते हैं। इतना बोलकर उसने राधे श्याम की पलव देखा जो बेचैनी से बस सड़क को देखे जा रहा था। उसकी बेचैनी तब खत्म हुई जब वहां एक कैब आकर रुकी। राधे श्याम ने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। काशी भी कैब की बैक सीट पर बैठ गई। वे दोनों अब बिना मनही को आवाज़ लगाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। राधे श्याम का दिल भी डर के कारण जोरों से धड़क रहा था। कहीं उसकी बेटी अब उसे छोड़कर अपने पति को तो नहीं चुन लेगी, ये डर उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा था। उनके जाते ही रूहान ने धीरे से अनाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मैडम जी मत जाइए, मैं कैसे रहूंगा अब? आपको याद है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था और उसके मुताबिक हमारा डिवोर्स कभी नहीं हो सकता, और अगर आप अपने वादे से मुकर गईं मेरा जिंदगी से भरोसा उठ जाएगा। इतना बोलकर रूहान झुक गया, क्योंकि उसे पता था अगर वो ज्यादा बोलेगा तो रोने लग जाएगा। अनाही ने रूहान के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, न मैं कॉन्ट्रैक्ट भूली हूँ और न ही अपना वादा, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर वो काशी के बगल में बैठ गई, जिसके साथ ही कैब स्टार्ट हुई और वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। रूहान तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो कैब उसकी आँखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। उसे कैब के जाते ही रूहान वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे और वो किसी छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए अब भी अनाही को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता था उसकी ये रोती हुई आवाज़ अब अनाही के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सही अपनी मैडम जी को आवाज़ लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ तेज़ कदमों से चलता हुआ वेदांत और उसके पीछे अनंत आया। वे दोनों रूहान को इस हालत में देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था अपने छोटे भाई के लिए। अनंत जल्दी से रूहान के सामने आते हुए बोला, छोटे बच्चों की तरह रोने से कुछ नहीं होगा, चलो अंदर बताओ कि सब कुछ क्या है। क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? मोहिनी को हम सब जानते हैं, लेकिन वो दूसरी लड़की कौन है? रूहान ने अपनी लाल आंखों से अनंत की तरफ देखा। अनंत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भाई देख, मुझे पता है तू अपनी मैडम से तो बहुत प्यार करता है और उन्हें धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी लोग सबूत मांगते हैं और तुम्हें वो देना पड़ेगा। चलो उठो। वेदांत भी आगे बढ़कर रूहान को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कहीं रूहान उससे और ज्यादा नाराज न हो जाए। अनंत ने सहारा देकर रूहान को उठाया और फिर वे तीनों वापस घर के अंदर आ गए। अनंत ने धीरे से रूहान के कान में कहा, अब रोना बंद कर, आंटी पहले से रो रही हैं, तुझे ऐसे देखेंगी तो और ज्यादा रोने लग जाएंगी। रूहान ने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर तेज कदमों से वहां से अपने कमरे में चला गया। माधवी और राधिका अलग ही खुश हो रही थीं और अब बस बेसब्री से अपने अपने पति का आने का इंतजार कर रही थीं कि वो उन्हें गुड न्यूज़ देंगी और वो सब मिलकर पार्टी करें। आखिर जो वो लोग करना चाहते थे वो उनके बिना कुछ किए ही हो गया। फिर माधवी तेज कदमों से रूहान के कमरे में गई। आखिर उसे रूहान को भी तो अपनी साइड करना था। उसने देखा कि रूहान शांत बस बेड पर बैठा था।
माधवी ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, बेटा क्या मैं अंदर आ जाऊँ? रूहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आपको बुला लूँगा। ये सुनकर माधवी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन फिर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली गई।